डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान 12 मैथ्यू 12 से 14 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 12 मैथ्यू 12 से 14 है। यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खैर, अगले पैराग्राफ में यीशु और फरीसियों के बीच विश्राम की प्रकृति, सप्त के दिन की प्रकृति को लेकर थोड़ा संघर्ष है। दूसरे लोगों के खेतों में बीनना वैध था। कानून में इसकी इजाजत थी। फरीसियों ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि सप्त के दिन भोजन तैयार करना कानूनी नहीं था, वह कानून के खिलाफ था। परंपरा ने सप्त के दिन उपवास करने से भी मना किया है, जो कि यीशु के शिष्यों को करना पड़ता अगर उन्होंने खेत से बीनना नहीं किया होता, क्योंकि मंत्रालय में शामिल होने के कारण उनके पास कुछ भी तैयार नहीं था। इसलिए फरीसियों ने अपने शिष्यों को ऐसा करने देने के लिए यीशु की आलोचना की। वास्तव में भोजन तैयार करने का एकमात्र तरीका यह है कि वे भूसी उतार रहे हैं और अनाज को पीसकर अपने मुंह में डाल रहे हैं। परंतु यीशु ने उन्हें अपमान के साथ उत्तर दिया, क्या आपने नहीं पढ़ा? फिर ये अत्यधिक अशिक्षित लोग थे। क्या आपने नहीं पढ़ा कि पवित्र शास्त्र वास्तव में क्या कहता है? वह श्लोक 4 से 6 में बाइबल के उदाहरण प्रस्तुत करता है। डेविड और उसके साथी। याजक ने दाऊद और उसके साथियों को रोटी दी। अब हम 1 शमूएल से नहीं जानते कि वास्तव में उसके साथ उसके साथी थे, लेकिन कम से कम हम जानते हैं कि महायाजक ने सोचा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डेविड ने उसे यही बताया था। तो किसी भी मामले में महायाजक ने सोचा कि सब ठीक है। यद्यपि यह पवित्र रोटी थी, सामान्यतः यह केवल पुजारियों के लिए थी। आपातकाल में मानवीय आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा यीशु ने कहा, याजक सप्त के दिन मंदिर में काम करते हैं। खैर, फरीसियों ने उस तर्क का उपयोग तब किया जब यह उस बात के लिए सुविधाजनक था जिसके लिए वे सप्त के दिन बहस कर रहे थे। याजक सप्त के दिन मंदिर में काम करते हैं। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम सप्त के दिन ऐसा नहीं कर सकते, जबकि यह कानून की भावना के अनुरूप है? और फिर से अध्याय 12 और श्लोक 7 में ठीक वैसे ही जैसे हमने अध्याय 9 और श्लोक 13 में देखा था। दया बनाम बलिदान, जैसा कि भविष्यवक्ता होशे ने कहा था, और यह बात तुम्हारे पैगंबरों में बहुत है, और यह आपके पास यशायाह अध्याय 1 में है, जहां वह आपके नए चंद्रमाओं और आपके सभी बलिदानों के बारे में बात करता है। यदि आप न्याय के अनुसार नहीं जीते तो यह पर्याप्त नहीं है। यशायाह अध्याय 58, आमोस अध्याय 5, न्याय जल की नाई और धर्म सदा बहने वाली धारा की नाई बहे। ईश्वर केवल हमारे निर्धारित रीति रिवाजों के बलिदान नहीं चाहता, वह आज्ञाकारिता का बलिदान और दया का बलिदान चाहता है। तो दया बनाम बलिदान। और फिर पद 8 में यीशु मनुष्य के पुत्र के सप्त के दिन का प्रभु होने की बात करके इसका चरमोत्कर्ष बढ़ाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, यदि वह सप्त के दिन का प्रभु है तो उसे दिव्य होना होगा, उसे परमेश्वर बनना होगा, क्योंकि केवल परमेश्वर ही सप्त के दिन का प्रभु है। हालांकि वे उस पर इस तरह मुकदमा नहीं चला सकते जैसे कि वह भगवान होने का दावा कर रहा हो, क्योंकि यह वास्तव में बहुत मुश्किल है। हिब्रू और अरामी भाषा में मनुष्य के पुत्र का मतलब आम तौर पर सिर्फ इंसान होता है। आप मनुष्य के पुत्र के मनुष्य होने के बारे में बात कर सकते हैं। तो सप्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया था, न कि मनुष्य सप्त के दिन के लिए। तो मनुष्य के पुत्र, मनुष्य उस अप्रत्यक्ष अर्थ में सब बात के भगवान हैं। वे संभवतः इसका ऐसा अर्थ लगा सकते हैं ताकि वे उसे पकड़ न सकें। लेकिन वास्तव में वह जो कह रहा है वह यह है कि वह सप्त के दिन का प्रभु है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र से उसका सामान्य अर्थ यही है। सप्त के दिन उपचार करने से फरीसियों के साथ कुछ संघर्ष हुए। फरीसियों ने जीवन बचाने के लिए चिकित्सा सहायता की अनुमति दी और निस्संदेह जीवन को प्राथमिकता दी गई। यदि सप्त के दिन आप पर हमला किया गया तो उन्होंने कहा कि आप अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन फरीसियों ने जान बचाने के लिए चिकित्सा सहायता की अनुमति दी। लेकिन यीशु वास्तव में दवा नहीं लगाते। यीशु उस आदमी पर हाथ भी नहीं डालता। यीशु उस आदमी से कहते हैं, अपना हाथ बढ़ाओ, और जैसे ही आदमी अपना हाथ बढ़ाता है वह पूर्ण हो जाता है। हाथ फैलाना काम नहीं था। अब फरीसियों के दो संप्रदायों में से हिलेलियों ने सप्त के दिन बीमारों के लिए प्रार्थना की भी अनुमति दी, भले ही शम्माइयों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन यीशु स्वयं प्रार्थना भी नहीं करते। वह सिर्फ इतना कहता है, अपना हाथ बढ़ाओ, क्योंकि वह जानता है कि क्या होने वाला है। वह पिता की इच्छा का पालन कर रहा है। अब यीशु ने कहा, तुम में से कौन सप्त के दिन गड्ढे में गिरे हुए जानवर की मदद नहीं करेगा? एकमात्र समूह जिसने ऐसा करने से मना किया वह एसेंस था। वे सप्त के दिन किसी जानवर को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन फरीसियों सहित बाकी सभी लोग ऐसा करेंगे। फरीसी भी सप्त के दिन अपने जानवरों को पानी पिलाते थे। मेरा मतलब है, उन्हें सप्त के दिन पीना होगा। एसेंस एक प्रकार से अतिवादी थे। उनमें से कुछ आपको बाथरूम तक जाने की इजाजत नहीं देंगे। यह आपको सप्त के दिन शौच करने की अनुमति नहीं देगा। बहुत चरम। लेकिन फरीसी ये सब चीजें करेंगे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह आवश्यक था। तो वे पाखंडी हो रहे हैं। खैर, आप किसी जानवर के लिए ऐसा करेंगे। आपने अन्य प्रकार के जानवरों जैसे भेड़िए या कुछ और के लिए गड्ढे खोदे, लेकिन कभी कभी आपका अपना जानवर उसमें गिर जाता था। आप एक जानवर की मदद करेंगे, लेकिन आप इस व्यक्ति को सप्त के दिन ठीक नहीं होने देंगे। और उनकी प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, उसके पास यह लंबे समय से है, वह किसी अन्य दिन ठीक हो सकता है, उसे किसी और दिन आने दो और ठीक हो जाओ। परंतु यही वह दिन था जब यीशु वहां थे। यही वह दिन था जब उपचार उपलब्ध था। और फिर यह कहता है कि वे बाहर गए और वे यीशु को मारना चाहते थे। ध्यान रखें, फरीसी उदारता के लिए जाने जाते थे, सदूकी नहीं थे। सदूकियों, तुम उनके रास्ते में आ गए, वे तुमसे छुटकारा पा लेंगे। वे सरकार के नियंत्रण में थे, याद है? लेकिन फरीसियों ने उदारता पर जोर दिया। फरीसियों, आपके लिए फरीसी नियमों के तहत फांसी पाना वास्तव में कठिन था, क्योंकि यदि आप किसी गुफा में जाते हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अभी अभी मरा है और कोई उसके ऊपर चाकू लेकर खड़ा है और चाकू से खून टपक रहा है, तो आप उस पर मुकदमा नहीं चला सकते व्यक्ति और उन्हें हत्या के लिए मार डालो, क्योंकि एक बात के लिए आपके पास दो गवाह होने चाहिए और दूसरी बात के लिए तुमने हत्या होते नहीं देखी। आप बस चाकू रखने वाले व्यक्ति को देखें। इसलिए फरीसियों ने इसे सचमुच कठिन बना दिया। वे लोगों को मारना नहीं चाहते थे, वे उदार थे। और यहां यीशु ने उन नियमों को भी नहीं तोड़ा है जिनका पालन हिलेलाइट करेंगे। वास्तव में उसने शम्माइट नियमों को भी नहीं तोड़ा है, क्योंकि उसने बीमारों के लिए प्रार्थना भी नहीं की थी। उसने बस इतना कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। लेकिन कागज पर हम जो हैं, सिद्धांत रूप में जो हैं, वह हमेशा व्यक्तिगत तौर पर नहीं होते। और ये विशेष फरीसी अपने सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे थे। वे वास्तव में पागल थे क्योंकि यीशु के बहुत बड़े अनुयायी थे और वह लोगों को उन तरीकों से ले जा रहा था जो उन्हें लगता था कि यह कानून के खिलाफ है, क्योंकि यह कानून के बारे में उनकी परंपरा के खिलाफ था। भगवान हमारी मदद करें, क्योंकि अक्सर हम अपने चर्च की परंपराओं के कारण चीजों का पालन करते हैं और वे हमेशा वही नहीं होते जो भगवान वास्तव में बाइबल में कह रहे हैं। लोगों को ठीक करने के लिए यीशु अक्सर कहते थे, मत बताओ, और वह हमारे यहाँ 12:16 में है। खैर, यह मार्क में पहले से ही एक विषय है। यह सब मार्क के माध्यम से है। और यहाँ मैथ्यू पर वापस आने से पहले मैं मार्क के माध्यम से विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यीशु ने एक कोढ़ी को चंगा किया और कहा, किसी को मत बताना। मरकुस 1:44। जब उसने याइर की बेटी को पाला तो उसने आज्ञा दी, किसी को न बताना। मरकुस 5:43। जब उसने मरकुस में 7:36 में बहरों को और 8:26 में अंधों को चंगा किया तो उसने कहा, किसी को मत बताना। खैर, वे अक्सर ऐसा करते थे कि वे जाते थे और किसी को बताते थे, लेकिन वह उनसे ऐसा नहीं करने को कहता था। तुम्हें पता है, उसके पास पहले से ही बड़ी भीड़ थी। यीशु ने मरकुस 4:11 में राज्य को बाहरी लोगों के लिए एक रहस्य के रूप में बताया। राक्षसों को यीशु की पहचान पता थी, इसलिए उसने मरकुस 1:25 और 3:11 में उन्हें हमेशा चुप करा दिया। यीशु चाहता था कि किसी को पता न चले कि वह 7:24 में एकांतवास पर कहा गया था। इनमें से कुछ केवल लोकप्रियता को नियंत्रित करने के लिए हो सकते हैं, जो बहुत जल्दी क्रूस की ओर ले जाएगा। लेकिन मैथ्यू दिखाता है कि यह यशायाह की किताब में भी कुछ पूरा करता है। तो मैथ्यू 12 वापस आते हुए मैथ्यू यशायाह 42:1-4 से उद्धरण देता है, जहां यह उस प्रिय सेवक की बात करता है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान उस पर अपनी आत्मा डालते हैं। खैर, मैथ्यू ने इसे अपने तरीके से अनुवादित किया है ताकि यह मैथ्यू 3:17 में स्वर्ग से आई आवाज के समान हो, जहां भगवान कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह स्पष्ट है कि यह इस बात से जुड़ा है कि वह यशायाह 42 को कैसे उद्धृत कर रहा है। लेकिन यशायाह 42, जब यह इस प्रिय सेवक की बात करता है तो कहता है कि वह विजय के समय तक चिल्लाएगा या कमजोर नरकट को भी नहीं तोड़ेगा। और फिर मत्ती 12:21, तब अन्य जाति या राष्ट्र, यह कुछ उसी तरह है जैसा सेप्टुआजेंट में प्रस्तुत किया गया है, उस पर भरोसा करेंगे। खैर, यह अच्छी बात है। यह फिर से गैर यहूदी मिशन में फिट बैठता है जिसके बारे में मैथ्यू बात कर रहा है। परंतु उस समय तक वह न चिल्लाता और न कमजोर सरकंडे को तोड़ता। स्मरण रखो, यही वह है जो नम्र और मन में दीन है। वह खुद का ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं निकला है। वह परमेश्वर का प्रेम दिखाने और लोगों को परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई से परिचित कराने के लिए निकला है। अब यशायाह के संदर्भ में यशायाह 42 स्पष्ट रूप से इज़राइल के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए श्लोक 18:19 में कहा गया है कि मेरे दास के सिवा कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूत को छोड़कर कौन बहरा है। इज़राइल नौकर के मिशन को उस तरह से पूरा नहीं करता है जैसा कि उन्हें करना चाहिए। यशायाह 49 इसी तरह से शुरू होता है। लेकिन जल्द ही यशायाह 49 उस सेवक की बात करता है जो इज़राइल के लिए कष्ट सहता है। और आपके पास यशायाह 52:13-12 यही बात है, जहां हमारे पास एक है जो सेवक के मिशन को पूरा करता है और वह यीशु है। और वह यही मैथ्यू के सुसमाचार में ऐसा कर रहा है। खैर, यीशु पर फरीसियों द्वारा कुछ और आरोप लगाए गए हैं। तनाव बन रहा है। कथा सलीब की ओर बढ़ रही है, हालांकि अंततः फरीसी ऐसा करने वाले नहीं होंगे। यह शैतान कौन है? फरीसियों का कहना है कि यह यीशु है। उन्होंने यीशु पर आरोप लगाया, लेकिन आरोपों को पलटना आम बात थी। यदि अदालत में किसी ने आप पर किसी बात का आरोप लगाया, यदि यह संभव होता तो आप कहते, ठीक है, नहीं, यह आपने किया है, मैंने नहीं। और यीशु वास्तव में यहाँ आरोपों को उलट देते हैं। यीशु कहते हैं, तुम्हारी पीढ़ी चिन्ह की लालसा करती है, मैं एक दुष्टात्मा निकाल रहा हूँ। आप उन लोगों की तरह हैं जो सभी राक्षसों को वापस आमंत्रित करते हैं। 12:4-5 में वह ऐसा कहते हैं, तो वह राक्षसों को बाहर निकाल रहा है। वह पीढ़ी उन्हें 7 गुना में वापस आमंत्रित कर रही है। फरीसियों के साथ इस संघर्ष में पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा का मुद्दा सामने आता है। वे पहले ही उस पर ईश्वर की निंदा करने का आरोप लगा चुके हैं। खैर, वह उन्हें चेतावनी दे रहा है कि वे इस समय भगवान की निंदा करने के खतरे में हैं। 12:2-4 में आरोप यह है कि वह बीलजेबुल द्वारा राक्षसों को बाहर निकालता है। राक्षसों द्वारा भूत भगाना जादू टोने का एक रूप था और लोग अक्सर इसे जादुई पपीरी में पाते हैं। लोग आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आत्माओं का आह्वान करते थे, इसलिए वे उस पर जादू टोना करने का आरोप लगा रहे हैं जो यहूदी कानून के तहत मौत के योग्य था। तो यीशु यहाँ इस पर 3 प्रतिक्रियाएं देते हैं। पहली प्रतिक्रिया यह है कि शैतान ऐसा क्यों करेगा? शैतान व्यापक रूप से दुष्टात्माओं को क्यों निकाल रहा होगा? हाँ, शायद कभी कभार आपको शैतान का और अधिक अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन यह व्यापक पैमाने पर राक्षसों को बाहर निकालने का काम मैं क्यों कर रहा हूँ, शैतान इसमें क्यों शामिल होगा? दूसरे, यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उन्हें शैतान के द्वारा बाहर निकाल रहा हूँ, तो आपके अपने बेटे उन्हें किसके द्वारा बाहर निकालते हैं? क्योंकि जब फरीसी या अन्य लोग राक्षसों से छुटकारा पाने की कोशिश करते थे, तो वे बुरी गंध, जादू की अंगूठियां और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते थे। यीशु ने उनमें से किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया। उसने बस उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे परमेश्वर द्वारा अधिकृत किया गया था। और उनकी तीसरी प्रतिक्रिया, यह जादू से नहीं, आत्माओं द्वारा नहीं, किसी आत्मा बीलजेबुल द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर की सच्ची आत्मा द्वारा है, 1:2-2:8। अब आत्मा और राज्य यहाँ निकटता से संबंधित हैं, जैसा कि हम देखेंगे, और नए नियम में अन्यत्र भी। वास्तव में पॉल के लेखन में वह राज्य की भाषा से अधिक आत्मा पर जोर देता है, क्योंकि यह आत्मा के माध्यम से है कि भगवान का शासन वर्तमान में हमारे अंदर साकार हो रहा है। लेकिन ल्यूक 11:20 में शब्द थोड़ा अलग है। यदि मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। यह फिरौन के जादूगरों जैसा है। निर्गमन 7 में वे चीजों की नकल करते हैं, कुछ निर्गमन 8 में, लेकिन अंत में वे निर्गमन 8 में कहते हैं, यह भगवान की उंगली है, हम इसकी नकल नहीं कर सकते। मूसा जो कर रहा है, हम इस बिंदु पर छोटे स्तर पर भी उसकी नकल नहीं कर सकते। खैर, मैथ्यू शब्दों की व्याख्या करता है और उसकी व्याख्या निश्चित रूप से सही है। भगवान की उंगली, उससे उनका क्या मतलब है? परमेश्वर की आत्मा यह कर रही है। अब यह मैथ्यू के सुसमाचार के संदर्भ में फिट बैठता है, क्योंकि आप मैथ्यू 12:18 के बारे में सोचते हैं, जहां वह यशायाह को उद्धृत कर रहा है। यीशु ने यशायाह 42 को पूरा किया। यीशु आत्माशक्त सेवक है, और यह राज्य के युगांत संबंधी वादे के बारे में हम जो जानते हैं उससे मेल खाता है। यशाया 44, यहेजकेल 36 इत्यादि। आत्मा जुड़ी हुई थी जोएल अध्याय 2 के साथ। जोएल 3 में चल रहा था, आत्मा वादा की गई बहाली भगवान के लोगों की बहाली के साथ जुड़ी हुई थी। पुराने नियम में भविष्य में आत्मा के उंडेले जाने के बारे में बात करने वाले अधिकांश अनुच्छेदों में यह सत्य है। इसलिए उन्हें देखना चाहिए क्योंकि आत्मा यीशु के मंत्रालय में सक्रिय है। उन्हें पहचानना चाहिए कि राज्य निकट है, कि परमेश्वर का राज्य यीशु के मंत्रालय में मौजूद है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। और इसका मतलब यह है कि वे पवित्र आत्मा को, यीशु के माध्यम से काम करने वाली परमेश्वर की आत्मा को बुला रहे हैं। वे उसे एक दुष्ट आत्मा कह रहे हैं। वे परमेश्वर की आत्मा को शैतान कह रहे हैं। वे न केवल यीशु को अस्वीकार कर रहे हैं, वे आत्मा के यीशु के स्पष्ट प्रमाण को भी अस्वीकार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की निंदा करते हुए लोगों ने इसके बारे में और इसका क्या अर्थ है इसके बारे में सभी प्रकार की बातें कही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस संदर्भ में यह हमें दिखाता है कि इसका क्या मतलब है कि लोगों के दिल इतने कठोर हैं कि वे न केवल संदेश को अस्वीकार कर रहे हैं, बल्कि वे संदेश के सबसे स्पष्ट सबूत को भी अस्वीकार कर रहे हैं। वे उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां चाहे किसी भी तरह का सबूत पेश किया जाए, वे उसे अस्वीकार कर देते हैं। उनके दिल इतने कठोर हैं, उनके दिमाग इतने बंद हैं। यीशु कहते हैं, तुम्हें इतनी दूर जाने का खतरा है, वह फरीसियों से कहते हैं। कभी कभी ईसाई आश्चर्य करते हैं, ओह क्या मैंने कभी ऐसा किया है? देखो, यदि तुमने पश्चाताप किया है तो तुमने ऐसा नहीं किया है। यह वह व्यक्ति है जिसका हृदय इतना कठोर है कि वे पश्चाताप करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। यीशु शक्तिशाली मनुष्य को बांधने की बात करते हैं। वह बलवान मनुष्य को बांधने का दृष्टांत देता है। यह मार्क 3:27 में भी है, और मार्क वास्तव में इसका एक उदाहरण देता है जहां यीशु ने एक आदमी से राक्षसों की एक सेना को बाहर निकाला जिसे कोई भी बांध नहीं सकता था क्योंकि वह बहुत मजबूत था। खैर, यहां यीशु ताकतवर आदमी को एक अलग तरीके से बांधने की बात करते हैं। कभी कभी आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो घूमते हैं और कहते हैं, शैतान मैं तुम्हें बांधता हूं। वैसे जब मैंने उन तरीकों के बारे में बात की जिनसे मैं प्रार्थना करता था और भगवान ने मेरे विश्वास का उत्तर दिया, भले ही मैं इसे गलत तरीके से कर रहा था, यह उन तरीकों में से एक है। हालांकि एक बार जब मुझे पता चला कि यह गलत है तो यह अब और काम नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु यह कहते फिरे कि शैतान मैं तुम्हें बांधता हूं। वह गॉस्पेल में अपने किसी भी भूत भगाने से पहले ऐसा नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह आवश्यक रूप से गलत है, लेकिन अक्सर यहूदी कहानियों में यह होता है, जादुई ग्रंथों में यह हर जगह होता है, जहां वे आत्माओं को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य करने की बात करते हैं इत्यादि। लेकिन यीशु परोक्ष रूप से बात करते हैं कि उन्होंने ताकतवर आदमी को बांध दिया था ताकि ताकतवर आदमी का सामान छीन लिया जा सके। दूसरे शब्दों में यीशु इन लोगों को शैतान के वश में होने से बचा रहा है। अच्छा, यीशु ने उस बलवंत मनुष्य को कहां बांध दिया था? यदि वह किसी विशेष घटना का जिक्र कर रहा है तो सबसे संभावित स्थान जहां हम देख सकते हैं कि उसने मैथ्यू अध्याय 4 में प्रलोभन का विरोध करके शैतान को बांध दिया था, यीशु ने उसे वहां हराया था। अब यीशु शक्तिशाली व्यक्ति की संपत्ति को लूटने के लिए स्वतंत्र था। ताकतवर आदमी उस तक नहीं पहुंच सका। यीशु आगे कहते हैं, आपका मूल्यांकन आपके शब्दों से किया जाएगा। आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो भी शब्द बोलता है वह वहीं रहेगा। इसे क्यामत के दिन लाया जाएगा। ठीक है, यदि बुरी बातें कहना न्याय के योग्य है, तो स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करना भी न्याय के योग्य होगा। इसे माफ क्यों नहीं किया जा सकता? ठीक है, यदि कोई सबसे स्पष्ट साक्ष्य को भी अस्वीकार कर देता है, तो आपके हृदय सत्य को खोजने के लिए बहुत कठिन हो जाते हैं। तो यह फिर से किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो पहले ही पश्चाताप कर चुका है। यीशु आगे कहते हैं, आप जानते हैं, वे एक संकेत चाहते हैं। यीशु आगे कहते हैं, तुम्हें एक चिन्ह दिया जाएगा। यह वह नहीं है जो आप मांग रहे हैं। उनके आलोचकों ने 12:38 में एक संकेत की मांग की, जैसे कि वह संकेत नहीं दे रहे थे। वह उन्हें पहले से ही बहुत सारे संकेत दे रहा था। परंतु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें योना का चिन्ह दूंगा। यीशु 3 दिन तक मरा हुआ था, जैसे योना 3 दिन तक समुद्री जीव के पेट में था। अब प्राचीन गिनती के अनुसार 3 दिनों का मतलब है, आप जानते हैं, 1 दिन का एक हिस्सा पूरे दिन के रूप में गिना जाता है। इसलिए मैं उन लोगों से सहमत हूं जो कहते हैं कि यीशु की मृत्यु शुक्रवार को हुई और उनका पुनरुत्थान रविवार को हुआ। लेकिन किसी भी स्थिति में यह 3 दिनों में से प्रत्येक का हिस्सा है। लेकिन यह वह बात है जो यीशु कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीनवे के लोगों ने योना के उपदेश पर पश्चाताप किया। अब मैथ्यू में यह वास्तव में वह उपदेश है जिस पर उन्हें पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित किया गया है। फैसले में यहूदी शिक्षकों ने कहा कि जो अमीर भगवान का अनुसरण करते हैं, वे फैसले में ऊपर उठेंगे। और जिन लोगों ने कहा, नहीं, मैं ईश्वर का अनुसरण करने के लिए बहुत अमीर हूँ, जो अमीर ईश्वर का अनुसरण करते थे, वे खड़े होकर उनकी निंदा करेंगे और न्याय के समय कंगाल ऊपर उठेंगे। और जो गरीब धर्मात्मा थे, वे उन गरीबों की ओर संकेत करेंगे जो अधर्मी थे। जो कंगाल अधर्मी थे, उन्होंने कहा, तुम जानते हो, हम इतने कंगाल थे कि परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। और जो गरीब भगवान की सेवा करते थे, वे कहेंगे, आप जानते हैं, हम कह सकते हैं कि यह गलत है, और वे इसकी निंदा करेंगे। उसी तरह यीशु कहते हैं, अन्य जाति ऊपर उठने वाले हैं। ये लोग जिनके पास तुमसे कम रोशनी थी, फैसले में तुम्हारी निंदा करेंगे। न्याय के दिन नीनवे और शीबा की रानी तुमसे बेहतर स्थिति में होंगी। और मैथ्यू 12 यीशु की माँ और भाइयों के बारे में बात करता है। अब मार्क में यीशु की माँ और भाई कहानी में लगभग इसी बिंदु पर आए 3:31 में, क्योंकि 3:21 में उन्होंने सुना था कि यीशु ने अपना दिमाग खो दिया था। खैर, मैथ्यू यहाँ यीशु की माँ और भाइयों के प्रति थोड़ा दयालु है। वह उस पूरे मुद्दे पर जोर नहीं देता, लेकिन संस्कृति में परिवार एक आवश्यक मूल्य था। और जाहिर तौर पर आपको अपने माता पिता का सम्मान करना होगा। लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे शिष्य मेरे आध्यात्मिक परिवार हैं। यही वह परिवार है जो सबसे अधिक मायने रखता है। वह अपने सांसारिक परिवार को अस्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि वह इसे प्राथमिकता दे रहा है कि उसका आध्यात्मिक परिवार सबसे अधिक मायने रखता है। और यह उस संस्कृति में अपमानजनक होता। मैथ्यू 13 की ओर बढ़ते हुए राज्य की उपस्थिति के दृष्टांत। हमारे यहाँ 7 या 8 दृष्टांत हैं। मैथ्यू 24:25 में भविष्य के राज्य के 7 या 8 दृष्टांतों की तरह। और इन दृष्टांतों में से एक इस खंड के केंद्र की ओर, यह वास्तव में के बीच के अंतर पर जोर देता है, के महत्व पर जोर देता है राज्य की उपस्थिति। सरसों का बीज बनाम सरसों का पेय। फिर से आटे में खमीर मिलाया गया। वर्तमान छिपे साम्राज्य बनाम भविष्य के गौरव पर जोर दें। इस दृष्टांत में भी उनके पास भविष्य की फसल के लिए बीज बोने वाला मैथ्यू 13 है। वह भविष्य में गेहूं और जंगली बीज के एक साथ उगने की भी बात करते हैं। तो यह भविष्य के राज्य के प्रकाश में वर्तमान गतिविधि के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यह वर्तमान गतिविधि है। राज्य विशेष रूप से खमीर की तरह है, खजाने की तरह है, या मोती की तरह है, जिसके लिए कोई अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। एक दृष्टांत क्या है? यीशु बहुत सारे दृष्टांत बताते हैं। एक दृष्टांत क्या है? खैर, कुछ विद्वानों ने यूनानी शब्द के सामान्य अर्थ पर जोर दिया है। पहले से ही अरस्तु में इसका मतलब एक सादृश्य था। यूनानी दार्शनिकों और पॉल ने दृष्टांतों का उपयोग किया, उन्होंने उपमाओं का बहुत उपयोग किया, लेकिन आमतौर पर वे जो बता रहे थे वह यीशु और अन्य यहूदी शिक्षकों की तरह जीवंत कहानी दृष्टांत नहीं थे। वैसे इसका तात्पर्य यीशु के दृष्टांतों की प्रामाणिकता से है। चूंकि बाद के चर्च ने इस प्रकार के दृष्टांत नहीं बताए, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि बाद के चर्च ने ये दृष्टांत नहीं बनाए होंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो यीशु के पास वापस जाती हैं। और यह कुछ ऐसा है जो उन लोगों के लिए भी है जो किसी ऐसी चीज पर संदेह करते हैं जिसे आप साबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास सबूत हैं जो उन्हें यह कहने के लिए प्रेरित करेंगे, नहीं, ये यीशु के पास वापस जाते हैं अगर वे सबूत के लिए खुले हैं। हिब्रू शब्द मशाल, जिसे कभी कभी ग्रीक में दृष्टांत के रूप में अनुवादित किया जाता है, का अर्थ विभिन्न चीजें हैं। इसमें कहानियां, कहावतें, व्यंग्यात्मक गीत, पहेलियां आदि शामिल हो सकते हैं। उसी तरह यीशु के दृष्टांत साहित्यिक रूपों की समान श्रेणी में फैले हुए हैं, तो संभवतः इसका उपयोग उसी तरह किया जाता है जैसे सेप्टुआजेंट पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद कभी कभी मशाल का अनुवाद करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करता है। यीशु इस तरह से बुद्धिमान बातें कह रहे हैं। यीशु के दृष्टांतों से हमें जो निकटतम विशिष्ट समानताएं मिलती हैं, वे अन्य यहूदी संतों से मिलती हैं। आपको कुछ जानवरों के दृष्टांत और यूनानियों के बीच दंतकथाएं मिल सकती हैं, लेकिन वास्तव में निकटतम समानताएं हमारे पास हैं, और हमारे पास एक पौधे का दृष्टांत है। वैसे पुराने नियम में पहली सब्जी की कहानी, हम कह सकते हैं, न्यायाधीशों के अध्याय से 9 गिदोन के पुत्रों में से एक द्वारा बताया गया। लेकिन मेरा मानना है कि 2 शमूएल अध्याय 12 में नाथन ने डेविड को एक दृष्टांत भी सुनाया है। लेकिन यीशु के दृष्टांतों के निकटतम विशिष्ट समानताएं अन्य यहूदी संतों द्वारा बताए गए हैं। वास्तव में उनमें से कुछ एक ही कहानी का उपयोग करते हैं। रब्बियों ने कहानी दृष्टांतों का भी उपयोग किया। उन्होंने उसी प्रकार की स्टॉक विशेषताओं का उपयोग किया जो यीशु ने किया था, जैसे एक जमींदार और एक खेत, एक राजा अपने बच्चों और अपने बेटे के लिए शादी की दावत दे रहा था, इत्यादि। लेकिन बाद में रब्बी यीशु को प्रभावित नहीं कर सके। हम यह जानते हैं क्योंकि वे बाद में हैं। नहीं, उन्होंने यीशु से सीखने की कोशिश की होगी। रब्बी एलियेजर बेन हरकिन्स की एक कहानी है। मेरा मानना है कि यह वही था जिसे विधर्म के लिए 1 मिनट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, और वह ऐसा कह रहा था, ठीक है, मैंने क्या गलत किया है कि भगवान ने मुझ पर झूठा आरोप लगाने की अनुमति दी है। और एक अन्य रब्बी ने उससे कहा, अच्छा, क्या तुमने कभी कुछ ऐसा सुना है जो इन यहूदी ईसाइयों ने कहा हो जिसे तुमने स्वीकार किया हो? उन्होंने कहा, अरे हाँ, कुछ तो था। खैर, आप देखिए, इसीलिए आप इसके लायक हैं। वे यीशु द्वारा कही गई किसी भी बात या उसके अनुयायियों द्वारा कही गई किसी भी बात का अनुमोदन करने में बहुत पीछे थे। उनका मानना था कि यह उनके दिमाग को दूषित कर रहा है, इसलिए उन्होंने यीशु से सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन उन दोनों का एक साझा स्रोत था कि यहूदी संत अक्सर अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हमारे पास सिराज वगैरह में कुछ कहानियां हैं। रब्बी, जैसा कि हमने उनके बाद के साहित्य में पाया है, यीशु की तुलना में अक्सर शाही अदालतों का उपयोग करते हैं। वह कभी कभी ऐसा करता है, लेकिन यीशु के दृष्टांत अधिक कृषि संबंधी हैं, शायद इसलिए कि वह विशेष रूप से गैलीलियन गरीब किसानों से बात कर रहे हैं। रब्बी पारंपरिक मूल्यों का भी समर्थन करते थे। यीशु संस्कृति के मूल के विरुद्ध जाने के लिए पारंपरिक मूल्यों को नष्ट कर देते हैं। यीशु अधिक युगांतवादी भी हैं और अंत समय के बारे में अधिक बात करते हैं। रब्बियों ने आंशिक रूप से ऐसा कम किया होगा क्योंकि वे बार कोखबा नाम के एक झूठे मसीहा के पीछे जल गए थे, जिसे बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वह झूठा था। लेकिन यीशु सच्चा मसीहा, अंत समय के बारे में बात करने को तैयार था। दृष्टांतों का उद्देश्य, दृष्टांत मूलतः उपदेशात्मक चित्रण थे। भला उपदेश के बिना दृष्टांत का क्या लाभ? अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कई बार यदि आप कहानी सुनाते हैं और आपके पास उसके साथ जाने के लिए उपदेश नहीं है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि आप कहानी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। अक्सर यीशु सार्वजनिक रूप से उनकी व्याख्या किए बिना दृष्टांत सुनाते थे। यीशु ने अपने शिष्यों के लिए राज्य का रहस्य रखा और दूसरों को केवल इतना सुराग दिया कि उन्हें सप्ताह के मध्य में बाइबल अध्ययन के लिए वापस आमंत्रित किया जा सके या उन्हें और अधिक निकटता से उनका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया जा सके, ताकि वे भी शिष्य बन सकें और उनकी शिक्षा सीख सकें। यह सिर्फ बारहों के लिए नहीं है, बल्कि शिष्यों के लिए भी है। वे सभी जो यीशु के छात्र थे, जो उनका करीब से अनुसरण कर रहे थे। कुछ विद्वान जो यीशु की कुछ शिक्षाओं पर अधिक संदेह करते हैं, उन्हें संदेह है कि यीशु ने कभी अपने दृष्टांतों को समझाया, यहाँ तक कि अपने शिष्यों को भी। लेकिन बहुत संभव है कि वे गलत हों। वास्तव में प्राचीन यहूदी संस्कृति के बारे में हम जो जानते हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वे बहुत बहुत गलत हैं। यहूदी शिक्षक आम तौर पर अपने दृष्टांतों और यहां तक कि अपनी गुप्त शिक्षाओं के साथ व्याख्याएं देते थे, जिसे वे अपने शिष्यों को बताते थे। अब उनके पास कुछ गुप्त शिक्षाएं थीं जिन्हें वे एक समय में केवल एक ही शिष्य से संवाद करते थे, जैसे कि जब वे सिंहासन रथ के बारे में बात कर रहे थे या वे सृष्टि के रहस्यों के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आग स्वर्ग से नीचे आ सकती है, हम बहुत से लोगों के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन अपनी गुप्त शिक्षाओं के साथ भी उन्होंने अपने शिष्यों को सूचित किया। उन्होंने यही किया। वे अपने दृष्टांत समझाएंगे। यीशु के कई दृष्टांत अपने संदर्भ से स्वतः स्पष्ट हैं। निश्चित रूप से लूका 15 में दृष्टांत स्वयं स्पष्ट हैं। लेकिन यीशु के शिष्य हम में से अधिकांश लोगों से अधिक चतुर नहीं थे और यीशु के शिष्यों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। मुझे नहीं पता कि स्पष्टीकरण के बिना मुझे उनमें से कितने मिल गए होते। कुछ अधिक संशयवादी विद्वानों को यीशु की व्याख्याओं के सुसमाचार के रिकॉर्ड पसंद नहीं हैं, क्योंकि वे उन दृष्टांतों की व्याख्याओं से असहमत हैं जो इन विद्वानों ने पेश किए थे। लेकिन फिर भी प्राचीन शिक्षक आम तौर पर अपने शिष्यों को ये बातें समझाते थे। और अनुमान लगाइए कि हमारे सुसमाचार में जो कुछ है उसका मुख्य स्रोत कौन है? शिष्य। तो संभवतः उन्होंने व्याख्याएं सुनी। खैर, ऑगस्टीन और मध्ययुगीन व्याख्याकारों ने दृष्टांतों को बहुत अधिक रूपकित किया। इसलिए कुछ व्याख्याकारों ने दृष्टांतों के उस रूपकीकरण के विरुद्ध अत्यधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की और दृष्टांत के प्रत्येक विवरण में प्रतीकात्मक अर्थ खोजने की कोशिश की। तो एडोल्फ जूलिचर ने तर्क दिया कि प्रत्येक दृष्टांत का केवल एक अर्थ और एक मुख्य बिंदु होता है। इसलिए जब भी यीशु ने अपने दृष्टांतों में वास्तविकता के साथ संपर्क के एक से अधिक बिंदुओं की व्याख्या की, जूलिचर ने स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जूलिचर, जिसका अनुसरण डोर और जेरेमियास ने भी किया था, और जेरेमियास को बेहतर पता होना चाहिए था क्योंकि वह यहूदी साहित्य को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन जूलिचर, जेरेमियास और डोर बहुत दूर चले गए क्योंकि प्राचीन यहूदी दृष्टांतों में उनके पास अक्सर कई बिंदु होते थे वास्तविकता के साथ संपर्क का। जरूरी नहीं कि हर बिंदु किसी चीज का प्रतीक हो, लेकिन अक्सर उनके कई बिंदु होते थे। जूलिचर ने एक बात इसलिए कही क्योंकि वह अरस्तु के बयानबाजी के नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन रब्बी शायद आम तौर पर नहीं जानते थे और निश्चित रूप से अरस्तु के बयानबाजी के नियमों के बारे में उतनी परवाह नहीं करते थे। और जैसा कि एक अलंकारिक आलोचक बेन विद्रिंगटन ने बताया है, जे जूलिचर ने अरस्तु की भी गलत व्याख्या की। जूलिचर के समकालीन फीबिग ने दृष्टांतों को एक अलग तरीके से देखा। उन्होंने वास्तव में आगमनात्मक रूप से देखा कि रब्बियों ने अपने दृष्टांतों को कैसे बताया और उन्होंने अपनी व्याख्याएं कैसे दी। लिचर के विपरीत सही रास्ते पर था। तो रॉबर्ट जॉनसटन ने वास्तव में टैनेटिक दृष्टांतों पर 600 पेज का शोध प्रबंध किया और विस्तार से प्रदर्शित किया कि फीबिग सही थे और जे जूलिचर गलत थे। और इसलिए अधिकांश विद्वान जो यहूदी दृष्टांतों के बारे में कुछ भी जानते हैं, वे इसे पहचानते हैं, जिनमें यहूदी विद्वान भी शामिल हैं जो यहूदी दृष्टांतों के बारे में लिखते हैं। वे मानते हैं कि अक्सर व्याख्याएं होती थीं और अक्सर उनके संपर्क के कई बिंदु होते थे। यहां तक कि बाइबल के दृष्टांतों में भी अक्सर संपर्क के कई बिंदु होते थे। यह 2 शमूएल 12 श्लोक 1-6 में सच है, जहां कुछ चीजें हैं जो अन्य चीजों के लिए खड़ी हैं। इस तरह के एक रब्बी दृष्टांत का बस एक उदाहरण। एक रब्बी ने एक राजा के बारे में एक दृष्टांत सुनाया जिसे अपने बगीचे के लिए रक्षकों की आवश्यकता थी। इसलिए उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो चल नहीं सकता था और दूसरे व्यक्ति को जो देख नहीं सकता था। जो व्यक्ति चल नहीं सकता था वह चोरों को पहचान सकता था, और जो व्यक्ति चल नहीं सकता था वह उछल सकता था और अपने हाथ हिला सकता था और घुसपैठियों को डरा सकता था, लेकिन उनमें से कोई भी उसके सेब नहीं चुरा सका। खैर, वह आदमी जो चल नहीं सकता था और वह लड़का जो देख नहीं सकता था, उन्होंने मालिक को मात देने का एक तरीका निकाला। वह व्यक्ति जो चल नहीं सकता था अंधे व्यक्ति की पीठ पर चढ़ गया और उन्होंने कुछ सेब चुरा लिए। जब राजा वापस आया तो उन्होंने कहा, अरे हम नहीं जानते कि सेब किसने चुराए। जाहिर है यह हम नहीं हो सकते क्योंकि हम में से एक अंधा है और दूसरा चल नहीं सकता। तो उसने लंगड़े आदमी को अंधे आदमी की पीठ पर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा, तुमने एक साथ पाप किया है, इसलिए तुम दोनों का न्याय एक साथ किया जाएगा। रब्बी ने कहा कि यह उसी तरह है जब भगवान दुनिया का न्याय करते हैं। वह पहले हमें पुनर्जीवित करेगा ताकि हमारी आत्माओं और हमारे शरीरों, जिन्होंने एक साथ पाप किया था, का एक साथ न्याय किया जा सके। खैर, जाहिर है इस दृष्टांत में न्यायाधीश और राजा भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दृष्टांत में अंधा व्यक्ति और वह व्यक्ति जो चल नहीं सकता था शरीर और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संपर्क के कई बिंदु थे, कम से कम 3। हम संपर्क के कई बिंदुओं वाले बोने वाले के दृष्टांत, मिट्टी के दृष्टांत में कुछ ऐसा ही देखने जा रहे हैं। प्रसंग यह है, यीशु का विरोध धार्मिक अभिजात वर्ग और संभवतः उसके अपने परिवार द्वारा किया जा रहा है, हालांकि मैथ्यू वास्तव में उस तरह से स्पष्ट नहीं है जिस तरह से मार्क है। और फिर दृष्टांत खंड के अंत में उसे उसके गृहनगर ने अस्वीकार कर दिया है। हर किसी को यीशु का संदेश नहीं मिल रहा है, इसलिए जो लोग यीशु के साथ समय बिताते हैं उन्हें यह पहचानना चाहिए कि जो मिट्टी अच्छे फल नहीं पैदा करती वह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो यीशु के संदेश को अस्वीकार करते हैं। वह मिट्टी जो अच्छे फल पैदा करती है, वही लोग हैं जो यीशु का संदेश प्राप्त करते हैं। लेकिन यीशु को इसे अपने शिष्यों को वैसे भी समझाना होगा। यीशु कुछ सामान्य छवियों का उपयोग करते हैं जिन्हें उनके श्रोता पहचान लेंगे। अधिकांश गैलिलियन खेतिहर किसान थे। उन्होंने जमीन पर या तो अपने लिए या धनी जमींदारों के लिए खेती की। वे अक्सर जुताई से पहले बुआई करते थे। कभी कभी वे बुआई से पहले जुताई करते थे। कुछ संस्कृतियां कहेंगी कि यह मूर्खतापूर्ण है। जुताई से पहले कभी भी बुआई नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्राचीन यहूदी साहित्य में हम पाते हैं कि यह दोनों तरीकों से किया जाता था। कभी कभी वे जुताई से पहले ही बुआई कर देते थे, और जाहिरा तौर पर यह उस व्यक्ति का इस क्षेत्र में पहला वर्ष है, इसलिए वह वास्तव में इलाके को उतना अच्छी तरह से नहीं जानता है जितना कि अगर उसके पास यह जमीन लंबे समय से होती तो उसे पता होता। इटली में अनाज पर औसत रिटर्न लगभग 5 या 6 गुना था। यहूदिया में यह लगभग 7.5 से 10 गुना था। तो आपके द्वारा बोए गए प्रत्येक अनाज के लिए आपको औसतन 7.5 से 10 तक वापस मिलेगा। लेकिन यीशु अच्छी मिट्टी के बारे में यह दृष्टांत बताने के बाद कि वह बुरी मिट्टी की तुलना में बुरी मिट्टी की भरपाई करती है, और हम इसके लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अन्यथा चर्च बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। ठीक है, लेकिन यीशु ने दृष्टांत समझाए बिना भीड़ को घर भेज दिया। इसलिए शिष्यों ने उनसे दृष्टांत के बारे में पूछा, यह किस बारे में बात कर रहा है? यीशु कहते हैं कि राज्य के रहस्य केवल तुम्हारे लिए हैं, वे बाहरी लोगों के लिए नहीं हैं। यदि कोई राज्य के रहस्य चाहता है तो उसे यहीं रहना होगा। उन्हें सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उन्हें केवल कहानियों और उपचारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें शिष्य बनने की जरूरत है। केवल वे लोग जो भीड़ के घर चले जाने के बाद इधर उधर रुके रहे, उन्हें ही समझ होगी। फिर यीशु 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं जो उनकी शिक्षा सुनते हैं। वह कहते हैं, बीज शैतान द्वारा चुरा लिया जाता है। नहीं, शैतान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बीज की चोरी के पीछे शैतान का हाथ है। बीज शैतान द्वारा चुरा लिया जाता है। हमारे पास वाणी का एक अलंकार है जो एक कान से जाता है और दूसरे कान से निकाल देता है। यह ऐसा हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति वीडियो देखता है या शिक्षण सुनता है, लेकिन वे वास्तव में ध्यान नहीं देते हैं। कठिन समय के लिए उनकी प्रतिबद्धता बहुत उथली है और परीक्षण दूसरी तरह की मिट्टी है। और दूसरी तरह की मिट्टी वे जो धन और इस जीवन के मामलों से विचलित हैं, वे अन्य चीजों को लेकर चिंतित हैं। वे पहले राज्य नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन पहले राज्य की तलाश करें और ये सभी चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। सबसे पहली बात। लेकिन फिर चौथा समूह, वे कहते हैं, चौथे प्रकार की मिट्टी, जिन्होंने शब्द को सुना और समझा। अच्छा, वे कौन थे जिन्होंने इस शब्द को समझा? यीशु ने उन्हें पहले ही बता दिया था। आप शिष्यों, आप जो व्याख्या के लिए रुके थे, क्या हम अच्छी भूमि बनना चाहते हैं? हम सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि शिष्य बनकर अच्छा आधार बन सकते हैं। यदि आप मैथ्यू पाठ्यक्रम के दौरान इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहे तो मुझे संदेह है कि आप शायद अच्छे मैदान में थे, क्योंकि अधिकांश लोगों में ऐसा करने का धैर्य नहीं होगा, लेकिन आप में धैर्य है। जो लोग केवल रविवार की सुबह उपदेश सुनते हैं, उनके लिए यह तब तक पर्याप्त नहीं हो सकता जब तक कि उनके पास स्वयं का बहुत मजबूत भक्तिपूर्ण जीवन न हो। हमें सप्ताह में केवल एक बार कुछ सुनने से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें शिष्य बनने की जरूरत है। हमें यीशु का अनुसरण करने की आवश्यकता है। हमें नियमित रूप से यीशु से सीखने की जरूरत है। राज्य के लोगों का भविष्य का रहस्योद्घाटन अध्याय 13 श्लोक 24 से 43 में है। हमारे पास राई और खमीर के दृष्टांत हैं, 13:31। इसे जंगली घास के दृष्टांत के बीच में रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु 4 मिट्टी के दृष्टांत के बाद दूसरी व्याख्या से पहले पहली व्याख्या देते हैं। जंगली बीज के दृष्टांत के बीच में वह सरसों के बीज और खमीर के बारे में बात करने जा रहा है, क्योंकि यह हमें कुछ सुराग देता है। हम इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन जंगली पौधों का दृष्टांत 13:24-30:36-40 में व्याख्या के साथ वर्तमान में राज्य की छिपीता पर जोर देता है। यह एक यथार्थवादी कृषि कहानी है, 13:24-30। गृहस्थ रब्बी की कहानियों और ग्रीक कहानियों में आम थे। रब्बी के दृष्टांतों में फील्ड आम थे, हालांकि वे तदर्थ थे। उन दृष्टांतों में उनका किसी भी प्रकार का मतलब हो सकता है। यीशु कहते हैं कि राज्य ऐसा है। उनका मतलब यह नहीं है कि राज्य आवश्यक रूप से पहली चीज की तरह है जिसका उन्होंने दृष्टांत में उल्लेख किया है, लेकिन यह तब था जब रब्बियों ने कहा कि उनका मतलब था कि राज्य इस पूरी कहानी की तरह है, जैसा कि यह दृष्टांत है। जरूरी नहीं कि वह पहली चीज हो उन्होंने उल्लेख किया। तो यीशु कहते हैं राज्य के साथ ऐसा ही है। खैर, इस व्यक्ति का एक दुश्मन था। प्राचीन विश्व में यह आम बात थी। बहुत से लोगों के शत्रु थे, जिनमें किसानों के भी शत्रु थे, और दुश्मन किसानों ने कभी कभी अन्य किसानों के साथ जो किया वह कभी कभी डेरनेल लोलियम टोमेंटम बोना था। शुरुआती दौर में यह गेहूं जैसा दिखता है। मैं इसे एक भयानक दृष्टांत कहता हूं। यह भी है, कुछ अनुवाद इन तारे को कहते हैं। अत प्रारंभिक अवस्था में यह गेहूं जैसा दिखता है। हम जानते हैं कि प्रतिद्वंद्वी किसान कभी कभी इस तरह से झगड़ते थे, क्योंकि रोमनों को किसी और के खेत में डेरनेल बोने के खिलाफ कानून भी बनाना पड़ता था। आप सावधानी से खरपतवार को उखाड़ सकते हैं, लेकिन आप इतनी सारी खरपतवार नहीं निकाल सकते। और क्योंकि डेरनेल गेहूं की तरह दिखता था, प्रारंभिक चरण में कुछ गेहूं के उखड़ने की संभावना थी। लेकिन गेहूं पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद आप डेरनेल और गेहूं के बीच अंतर कर सकते हैं, तब आप उन्हें अलग कर सकते हैं। ईंधन के अलावा डेरनेल बेकार था, और न्याय के दिन भी ऐसा ही होगा। तभी धर्मी और दुष्ट अलग हो जाएंगे। इससे पहले कि वह जंगली पौधे या डेरनेल के दृष्टांत की व्याख्या पर वापस आए, वह वर्तमान छिपे हुए साम्राज्य के बारे में एक दृष्टांत देता है, जो भविष्य के गौरवशाली साम्राज्य के समान है। सरसों का बीज लौकिक रूप से छोटा था, और वह बहुत बड़ा पौधा बन गया। विद्वान जिसे अक्सर सरसों के बीज और सरसों के पेड़ के रूप में पहचानते हैं, उसके अनुसार सरसों का पेड़ वास्तव में एक बहुत बड़ी झाड़ी है। यह गलील झील के आसपास लगभग 8 या 10 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसलिए पक्षी इसकी शाखाओं में घोंसले नहीं बनाते होंगे, वे बस इसकी शाखाओं में बसेरा कर सकते हैं। लेकिन यह दिलचस्प है, यीशु ऐसी भाषा का उपयोग करता है जो यहेजकेल 17 और विशेषकर दानियेल 4:12 से बहुत मिलती जुलती है। दानियेल 4:12 इन विभिन्न राज्यों नबूकदनेस्सर के राज्य के बारे में बात करता है। वह नबूकदनेस्सर को एक पेड़ की तरह बताता है, एक बड़ा पेड़ जिसकी शाखाओं पर पक्षी आ सकते थे और घोंसला बना सकते थे। तो यीशु राज्य की इस भाषा की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन अंततः वह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो उन 4 राज्यों का स्थान ले लेगा जिनके बारे में डैनियल बात करता है, पहले के राज्य जिनके बारे में डैनियल बात करता है। यीस्ट को कभी कभी बुराई से जोड़ा जाता था, इसलिए जब हम रोटी या रोटी में खमीर मिलाए जाने के बारे में सुनते हैं तो खमीर को कभी कभी बुराई से जोड़ा जाता है। तो इससे इसे यहाँ कुछ चौंकाने वाला मूल्य मिल सकता है, लेकिन खमीर का मुख्य विचार बुरा नहीं है। फसह के लिए खमीर या खमीर प्राप्त करने के मामले में यह सिर्फ जल्दबाजी का प्रतीक था। तुम्हें जल्दी करनी थी, आपके पास खमीर के साथ काम करने का समय नहीं था। यहाँ यीस्ट का मुद्दा सिर्फ यीस्ट की व्यापकता है, जो यीस्ट की सबसे विशिष्ट विशेषता है। यह पूरे आटे में मिल जाता है। हालांकि यीशु इसके लिए विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। वह कहता है कि महिला इसे आटे में छिपा देती है। अब यह एक असामान्य वर्णन है, इसलिए यह सशक्त है। यह मुद्दा बना रहा है। यह खमीर आटे में व्याप्त रहता है, परंतु वह इसे आटे में छिपा देती है। यदि आप इससे बेहतर नहीं जानते तो आप नहीं जानते कि यह वहां है। उसी प्रकार जैसे लोगों ने यीशु के राज्य को नहीं पहचाना यदि वे इसके बारे में बेहतर नहीं जानते थे। गैलीलियन महिलाएं अपने घर के लिए रोटी पकाती थीं, लेकिन यह गैलीलियन महिला द्वारा सामान्य रूप से पकाई जाने वाली रोटी से कहीं अधिक है। यहां आटा लगभग 50 पाउंड है। यह 100 से अधिक लोगों के लिए पर्याप्त रोटी है। मैं सीधे तौर पर नहीं सोच सकता कि 50 पाउंड के बराबर मीट्रिक क्या है, लेकिन मुझे 100 लोगों के लिए मीट्रिक समकक्ष के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बहुत सारी रोटी है। आम तौर पर कोई इतना कुछ ठीक नहीं करेगा। महिला के लिए इससे अधिक ठीक करना असंभव था, लेकिन यह कहने का एक तरीका है, आप जानते हैं, यह बहुत अच्छा होने वाला है। यह अभी जैसा दिखता है उससे कहीं आगे होने वाला है। लेकिन केवल विश्वास की आंखों वाले लोग ही राज्य की उपस्थिति को पहचानते हैं। हम में से जिनके पास वह आध्यात्मिक समझ है कि भगवान ने हमें पहचानने की दृष्टि दी है, यही राज्य है। हर कोई इसे नहीं पहचानता। पॉल 2 कुरिन्थियों 2 में इसके बारे में बात करता है। वह कहता है कि हम उन लोगों के लिए जीवन की सुगंध हैं जो अच्छी खबर प्राप्त करते हैं, और जो इसे अस्वीकार करते हैं उनके लिए मृत्यु की दुर्गंध है। वे हमारे प्रेरितिक कष्टों में केवल पीड़ा देखते हैं, जैसे वे क्रूस में केवल मृत्यु देखते हैं। लेकिन जिन लोगों को अनंत जीवन का उपहार दिया गया है, वे क्रूस में पहचानते हैं कि यह जीवन का संदेश है, और वे प्रेरितिक पीड़ा में पहचानते हैं कि यह एक उद्देश्य के लिए है। यह जीवन लाना है। उसी तरह लोगों ने हमेशा यीशु के कुछ बीमार लोगों को ठीक करने और दुष्टात्माओं को निकालने में राज्य को नहीं पहचाना, लेकिन यीशु यही कर रहे थे। यीशु के दृष्टांत परमेश्वर के रहस्यों को प्रकट करने के लिए हैं। उनका कहना है कि ये बाहरी लोगों के लिए पहेलियां हैं, लेकिन वे शिष्यों को सच्चाई बताते हैं, उन लोगों को जो उन पर ध्यान देने के इच्छुक हैं। खैर, जंगली पौधों और जंगली पौधों के दृष्टांत की व्याख्या। ईश्वर चुने हुए लोगों की खातिर दुष्टों को सहन करता है, लेकिन वह किसी दिन उनके बीच अंतर करेगा, 1336 से 43 तक। अंत समय की फसल की कल्पना परिचित थी। आप इसे कुछ बाद के यहूदी कार्यों जैसे 2 बारूक और 4 एज्रा में पाएंगे। यीशु ने मेज पर पापियों को गले लगाया, लेकिन उन्होंने धार्मिक लोगों की निंदा की। आप यह देखकर नहीं बता सकते कि किसी निश्चित समय पर कौन राज्य में आने वाला था और कौन नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते थे कि कौन दृढ़ रहेगा, और आप नहीं जानते थे कि वास्तव में कौन प्रतिक्रिया देगा उस संदेश के लिए जिसने इसे अभी तक नहीं सुना था। मिट्टी के दृष्टांत के साथ भी ऐसा ही है। तुम हर जगह बो, तुम्हें पता नहीं। भगवान के पास हमारे लिए आश्चर्य है। तुम्हें पता है, यह संदेश पहले गलील और फिर यहूदिया में फैला। फिर यह सीरिया, तुर्की और मिस्र में फैलने लगा और अंततः यह रोमन साम्राज्य में भी फैल गया। यह पूर्व की ओर पश्चिमी एशिया और आगे एशिया में फैलने लगा। यह दक्षिण की ओर फैलने लगा। 300 के दशक में अक्सुम का साम्राज्य लगभग उसी समय ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था जब रोमन साम्राज्य था। लेकिन आप देखते हैं कि ये स्थायी नहीं है। इतिहास में एक समय में जिन स्थानों पर सुसमाचार सबसे अधिक फल फूल रहा था, उनमें से कुछ में यह अब कम से कम है, या कम से कम अब यह बहुत दृढ़ता से नहीं है। कुछ अन्य स्थानों पर सुसमाचार फल फूल रहा है, आप ये देख सकते हैं। मेरा मतलब है, पहली सदी में किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन इतना अफ्रीका, इतना लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से जहां सुसमाचार फैला हुआ है, इनमें से अधिकांश एक शताब्दी के दौरान घटित हुआ। परमेश्वर सुनिश्चित करता है कि शुभ संदेश सभी राष्ट्रों और सभी लोगों तक पहुंचे। लेकिन हम हमेशा पहले से नहीं जानते कि कौन प्राप्त करेगा, इसलिए हमें सभी लोगों के पास खुशखबरी के साथ भेजा गया है। कभी कभी हम सुसमाचार के लिए आधारभूत कार्य करते हैं और फिर बाद में उसमें विस्फोट हो जाता है। मेरा मतलब है, यह सकारात्मक तरीके से फूटता है, यह सकारात्मक तरीके से फैलता है। मैथ्यू का जोर आंशिक रूप से यहूदी समुदाय के शेष भाग पर हो सकता है। आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, या फिर लोगों के साथ संगति करना जारी रखें, भले ही वे अभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हों। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। संभवतः कुछ लोगों ने कहा है कि यह उस चर्च पर लागू होता है जहां चर्च में अधर्मी और ईश्वरीय लोग हैं। इसमें सच्चाई हो सकती है। यह इस युग में दुनिया के साथ राज्य के लोगों के सहअस्तित्व के बारे में भी बात कर सकता है। 2 पत्रस 3 परमेश्वर के दिन की तलाश करने और उसे शीघ्रता से लाने के बारे में बात करता है। देरी का कारण क्या है? 2 पत्रस 3 कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वह चाहता है कि हर किसी को अनंत जीवन मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर की ओर मुड़ेंगे, जो अभी तक ईश्वर की ओर नहीं मुड़े हैं, यदि बात देर हो जाए। 13:44-53 उन लोगों की बात करता है जो राज्य का मूल्य जानते थे। राज्य को अपने सच्चे अनुयायियों से सब कुछ चुकाना पड़ेगा। यीशु हर चीज के लायक है। 13:44-46 यीशु एक खेत में छिपे खजाने की बात करते हैं। खैर, यहूदिया और गलील में लोग अक्सर खजाना छिपाते थे। यह एक प्रमुख लोकगीत रूपांकन था। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने इसके बारे में कहानियां बताईं। सुखद अंत, आपको खजाना मिलेगा। यहां एक किसान जाहिरा तौर पर शायद अनुपस्थित जमींदार के लिए काम कर रहा है। वहां बहुत सारे जमींदार थे। उनके पास जमीन थी, लेकिन वे इसे देखने के लिए बाहर नहीं आए। यहां कोई इस दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर काम कर रहा है। खैर, वह जाता है और वह जमीन का यह टुकड़ा जमींदार से खरीद लेता है। क्योंकि भूमि अनुबंध अक्सर निर्दिष्ट करते हैं, आपको भूमि और उसमें मौजूद सभी चीजें मिल जाती हैं। उसे सामान्य जमीन का ठेका मिलता है और जमीन में जो कुछ भी है उसका मालिक वह होता है। रब्बियों द्वारा बताई गई अधिकांश खजाने की कहानियों में कानूनी समझौता, खोजने वाले की संपत्ति या पश्चाताप के लिए इनाम शामिल था, लेकिन यहां लागत पर जोर दिया गया है। यह खजाना हर चीज के लायक था, इसलिए उसने कुछ ऐसा पाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया जिसका मूल्य बहुत अधिक था। यीशु ने कहा, यहाँ तक कि अपना जीवन भी, यदि तुम अनंत जीवन के लिए अपना जीवन खो देते हो तो यह इसके लायक है। हम अपना जीवन यीशु को सौंप देते हैं और वह उन्हें बचाता है। वह इसी तरह का एक और दृष्टांत भी बताता है, व्यापारी और मोती। किसान के विपरीत यह पूंजी वाला व्यक्ति है। यीशु यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कहानी सुनाते हैं जिसके पास कुछ धन है। अधिकांश व्यापारी एकल उत्पाद बेचते थे, लेकिन मोती अधिक महंगे उत्पादों में से थे। जब तक आयात रोमन साम्राज्य में आया तब तक वे लग्जरी उत्पाद थे। गोताखोर लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में मोती की तलाश में मछलियां पकड़ते थे। मोतियों के बारे में बात करने वाली अन्य यहूदी कहानियां एक व्यक्ति की धर्मप्रायणता पर जोर देती हैं। एक आदमी जिसने सब्बात के लिए मछली पाने के लिए अधिक भुगतान किया और इसलिए उसे मछली में एक मोती मिला, इत्यादि। कभी कभी टोरा शिक्षण के प्रतीक के रूप में मोती का उपयोग किया जाता था। लेकिन किसी भी मामले में यीशु द्वारा बताई गई इस कहानी में यहाँ एक व्यक्ति को बहुत मूल्यवान मोती मिलता है। यह मोती हर चीज के लायक था और इसलिए इस मामले में यीशु कहते हैं, इस मोती के लिए यदि आवश्यक हो तो सब कुछ त्याग दो। केवल अंतिम निर्णय ही उन लोगों को उजागर करेगा जो वास्तव में राज्य के प्रति समर्पित हैं। 13:47-50। ऐसा मत करो ताकि दूसरे लोग सोचें कि तुम महान हो। और फिर कुछ लोग दृढ़ नहीं रहते हैं और कुछ लोग बाद में मसीह में विश्वास करने लगते हैं। गलील झील के आसपास आपने मछुआरों को उस प्रकार की मछलियों से खाने योग्य और कोशेर मछलियों को अलग करते हुए देखा होगा जिन्हें आप नहीं खा सकते थे या जिन्हें खाना यहूदी कानून के विरुद्ध था, Leviticus 11। राज्य अभी तक आग से भस्म नहीं हुआ था, लेकिन राज्य गुप्त रूप से दुनिया में मौजूद था। किसी दिन राज्य पूर्ण हो जाएगा और परमेश्वर सब कुछ प्रकाश में लाएगा। परमेश्वर लोगों के हृदयों के रहस्यों का न्याय करेगा। जिन्हें क्षमा कर दिया गया है, जो परमेश्वर के प्रेम के प्रकाश में चलते हैं, वे सदैव उसके साथ रहेंगे। कष्ट दूर होंगे। जिन लोगों ने ईश्वर द्वारा उनके लिए किए गए सभी प्रेम प्रस्तावों को अस्वीकार करना चुना है, वे अपनी पसंद के अनुसार हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएंगे। और हम 13:51-53 में देखते हैं, राज्य के सच्चे शिक्षक सभी के देखने के लिए इसके मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। कानून अभी भी मूल्यवान है, याद है? 5:17-5:20 तक। खैर, कानून जानने वाले लोग भी थे। उन्हें पहले ही कानून की शिक्षा मिल चुकी है, लेकिन फिर वे राज्य में आते हैं और इसलिए वे राज्य की पूरी समझ के साथ टोरा में जो कुछ भी उनके पास था उसमें से सर्वश्रेष्ठ को एक साथ लाते हैं। और यीशु इन्हें राज्य के लिए शास्त्री के रूप में बोलते हैं। हमने इसके बारे में बाद में मैथ्यू के सुसमाचार में पढ़ा, जहां यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और शिक्षकों और शास्त्रियों को भेजता हूं। 28:19 में वह कहता है कि हमें राज्य के लिए शिष्य बनाना है। मैथ्यू स्वयं संभवतः राज्य के लिए ऐसा ही एक मुंशी था। वह धर्मशास्त्र को अच्छी तरह से जानता था और वह राज्य के शुभ समाचार को अच्छी तरह समझता था। इस बिंदु पर मैं Matthew 14 की ओर बढ़ सकता हूँ। फिर से मैं इनमें से कुछ चीजों को कम विस्तार से करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको Matthew 14 में हेरोदेस एंटिपस के बारे में यह कहानी बताने जा रहा हूँ। तुम्हें स्मरण है कि हेरोदेस गलील का राज्यपाल था। खैर, हेरोदेस एक से अधिक हैं। 2 में हेरोदेस महान है। यह हेरोदेस एंटिपास उसका एक पुत्र है। उनके पुत्र आर्केलॉस ने यहूदिया पर बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया। उन्हें पद से हटा दिया गया, लेकिन हेरोदेस एंटिपास लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। वह कोई राजा नहीं था, वह एक गवर्नर था, विशेष रूप से एक टेट्रार्क जो टेट्रार्की का गवर्नर था। लेकिन उन्होंने अपने काम से काम रखा और रोम को खुश रखा, और इस तरह वह जॉन द बैप्टिस्ट के समय तक पूरी पीढ़ी तक सत्ता में रहे। लेकिन तभी उसका अपने भाई की पत्नी हेरोडियास के साथ अफेयर हो गया। वह उसे इतना पसंद करता था कि वह चाहता था कि वह उससे शादी कर ले। लेकिन हेरोडियास एक राजकुमारी थी, और एक राजकुमारी के रूप में उसने एक बहुविवाहकर्ता से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, देखो, अगर तुम्हारी पहले से ही दूसरी पत्नी है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो एंटिपास ने फैसला किया, ठीक है, मैं हेरोडियास से शादी करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपनी पहली पत्नी को तलाक देने जा रहा हूं। खैर, हम पहले से ही जानते हैं कि यीशु ने इस तरह की चीजों के बारे में क्या सोचा था, लेकिन एंटिपास ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उनकी पहली पत्नी भी एक राजकुमारी थी। वह राजा अरेटस चतुर्थ की बेटी थी, जो नबातियन अरबों का राजा था। अब नबातिया बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें वह डेकापोलिस भी शामिल है, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। संभवत इस अवधि में दमिश्क पर उनका नियंत्रण नहीं था, लेकिन दमिश्क में व्यापारिक समुदाय के प्रमुख के रूप में उनका एक जातीय समूह वहां तैनात था। लेकिन उसने बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, वह एक बहुत शक्तिशाली राजा था। रोमनों ने वास्तव में उसे रोमन साम्राज्य के अधीन एक राजा के रूप में सत्ता में छोड़ दिया, क्योंकि वह सत्ता में काफी स्थापित था। उनकी बेटी की शादी हेरोदेस एंटिपास प्रथम से हुई थी, और वह राजनीतिक रूप से एक बहुत ही स्मार्ट शादी थी। लेकिन एंटिपास की पहली पत्नी नबातियन राजकुमारी ने यह जानकर अपमान स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एंटिपास ने उसे तलाक देने की योजना बनाई है। इससे पहले कि एंटिपास उसे तलाक दे पाता, वह वापस अपने पिता के पास भाग गई। इससे गलील और नबातियों के बीच तनाव पैदा हो गया। यहां नबातिया के कुछ दृश्य हैं जो शायद उस समय थोड़े बेहतर दिखते थे, लेकिन यह उस दिन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्योंकि हेरोदेस के अपने क्षेत्र में भी हेरोदेस ने न केवल गलील को नियंत्रित किया, उसने जॉर्डन के पार पेरिया को भी नियंत्रित किया। वहां बहुत से नबातियन रहते थे। और आखिरी चीज जो आप अपने क्षेत्र में चाहते हैं वह है कुछ लोग जो आपकी प्रजा हैं, लेकिन वे वास्तव में किसी और के प्रति वफादार हैं। निःसंदेह आज उन देशों में अक्सर ऐसा होता है जहां हमारे यहां ऐसे विभाजन हैं जो जातीय आधार पर नहीं चलते हैं इत्यादि। ऐसा हुआ, लेकिन हेरोदेस एंटिपास के लिए यह बहुत असुविधाजनक था। आखिरकार इससे युद्ध हुआ और नबातियों ने हेरोदेस एंटिपास को पूरी तरह से हरा दिया। हेरोदेस एंटिपास के लिए यह बहुत अपमानजनक था। यदि रोमनों ने हस्तक्षेप न किया होता तो उन्होंने उसका राज्य छीन लिया होता। हेरोडियास के साथ उनका खराब विवाह राजनीतिक रूप से संवेदनशील था। अब यह युद्ध वास्तव में जॉन द बैप्टिस्ट की मृत्यु के बाद हुआ। लोगों ने कहा कि यह जॉन बैप्टिस्ट की मृत्यु के कारण हेरोदेस पर निर्णय था, लेकिन यह पहले से ही एक राजनीतिक मुद्दा था, पहले से ही एक राजनीतिक समस्या थी जब जॉन बैप्टिस्ट इसके बारे में बात कर रहे थे। जॉन साथ आया। कभी कभी हम नैतिक मुद्दों को संबोधित कर रहे होते हैं, लेकिन उन नैतिक मुद्दों के राजनीतिक निहितार्थ प्रतीत होते हैं। इसलिए एंटिपास ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। जॉन का उपदेश लोगों को इस बात की शिकायत करने के लिए उकसा रहा था कि उसने इस विवाह के साथ क्या किया है, और इसलिए उसने जॉन को उसके पैरियन किले माचेरस की काल कोठरी में डाल दिया। यहां माचेरस के फिर से कुछ अवशेष हैं। यह तब बेहतर दिखता था। यहां कुछ और दृश्य हैं। और यह कोई काल कोठरी भी नहीं है। लेकिन मैथ्यू 14 मार्क अध्याय 6 में कहानी लंबी है, लेकिन मैथ्यू के विवरण सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। यहाँ का भोज 5,000 लोगों के मेजबान के रूप में यीशु के साथ विरोधाभास में है, जो हमारे संदर्भ में है। यीशु एक अच्छे मेजबान है। हेरोद एंटिपस एक सड़ा हुआ मेजबान है। एक दिन हेरोदेस एंटिपास अपने लिए एक बड़ी जन्मदिन की पार्टी का आयोजन कर रहा था। वैसे जन्मदिन यूनानियों और रोमनों द्वारा मनाया जाता था, वह कोई यहूदी प्रथा नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक बुरा रिवाज है। मुझे यह जश्न मनाना पसंद है कि भगवान ने मुझे एक और साल दिया है, और मुझे यह पसंद है कि उस दिन लोगों ने मेरे साथ विशेष रूप से अच्छा व्यवहार किया। लेकिन वह ग्रीक और रोमन प्रथा थी। लेकिन यहूदी अभिजात वर्ग के सदस्य अक्सर यूनानी रीति रिवाजों का पालन करते थे। हेरोडियन परिवार के भोज अत्यंत अनैतिक थे। एक विद्वान है जो अक्सर गॉस्पेल में रिपोर्टों पर बहुत संदेह करता है, लेकिन जब वह इस कहानी पर आता है तो उसने कहा, आप जानते हैं, मुझे इस पर संदेह होता, सिवाय इसके कि हम जानते हैं कि ठीक है, हेरोडियन परिवार इसके लिए कुख्यात था अनैतिक भोज। मार्क अध्याय 6 एस्तेर की कहानी से विरोधाभास रखता है। याद रखें, एस्तेर की पुस्तक अध्याय 1 में रानी वश्ती ने मेहमानों के सामने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया, लेकिन यहाँ हेरोडियास की बेटी राजकुमारी सैलोम, जिसका नाम हम जोसेफस से जानते हैं, इन मेहमानों के सामने भद्दा नृत्य करती है। परोश के राजा आकाश, राजा जेरेक्स ने संभवतः एस्तेर को आधा राज्य देने की पेशकश की थी। वह मार्क में है। मैथ्यू में वह विवरण शामिल नहीं है। लेकिन मार्क अध्याय 6 में एंटिपास अपनी शराबी वासना के कारण सैलोम को आधा राज्य देने की पेशकश करता है। अब एंटिपास उसे आधा राज्य नहीं दे सकता था। याद रखें, वह सिर्फ एक टेट्रार्क है, रोम राज्य का मालिक है। तो आप जानते हैं, वह उससे वादा कर रहा है, उसे कुछ ऐसी चीज की पेशकश कर रहा है जो वह वास्तव में उसे नहीं दे सकता। खैर, सैलोम चतुर है और उसे कुछ और व्यावहारिक चीज का अनुरोध करने की जरूरत है। तो वह जाती है और अपनी माँ से पूछती है। अब मार्क का कहना है कि वह अपनी माँ से पूछने के लिए बाहर गई थी। उसे बाहर क्यों जाना पड़ा? खैर, अधिकांश महलों की तरह माचेरस में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भोज हॉल थे, इसलिए वह अपनी माँ हेरोडियास से एक अलग जगह पर पूछने के लिए निकल जाती है। हेरोडियास अपने पति की शराबी वासना को देखने के लिए वहां नहीं थी, हालांकि वह शायद उसे अच्छी तरह से जानती थी कि इस मामले में भी वह कैसा था। तो सैलोम ने उसे एक अनुरोध दिया। खैर, हेरोदेस नशे में था। उन्होंने शपथ भी ली थी। इन डिनर मेहमानों के सामने अब उसकी इज्जत दांव पर थी। ऐसा करने से उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे जॉन को सुनना पसंद था, ठीक उसी तरह जैसे कुछ अन्य शासक दार्शनिकों या कुछ और को सुनकर मनोरंजन करना पसंद करते थे। तो जॉन का सिर काट दिया जाता है। यह निष्पादन का अधिक दयालु रूप था। यह रोमन नागरिकों आदि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रूप था, क्योंकि सिर काटने से व्यक्ति की मृत्यु तेजी से होती थी। कभी कभी सूली पर चढ़ाए जाने से मरने में कुछ दिन लग सकते हैं। उसके बाद उसके शिष्य अपनी जान जोखिम में डालकर उसे दफनाने आए, जो कुछ अध्यायों के बाद यीशु के अपने शिष्यों की बेवफाई को विरोधाभास के माध्यम से उजागर करता है। मार्क इस बारे में बात करते हैं कि कैसे सिर को एक थाली में पेश किया जाता है। यह इस भोज का एक बहुत ही अजीब चरमोत्कर्ष है, जो उस भोज के बिल्कुल विपरीत है जहां यीशु मेजबान थे और कई लोगों को खाना खिला रहे थे। इस विचित्र तत्व के संदर्भ में हमारे पास कुछ शासकों की प्राचीन काल की कुछ अन्य सच्ची कहानियां हैं, जो किसी लड़के या महिला की खातिर, जिसमें वे यौन रूप से रुचि रखते थे, किसी को उनके सामने मारकर उनका मनोरंजन करते थे। इसे पढ़ने वाले लोगों द्वारा सार्वभौमिक रूप से इसका तिरस्कार किया गया। तो जॉन को यहाँ एक शहीद के रूप में चित्रित किया जा रहा है, लेकिन हेरोड एंटिपस को एक बहुत बुरे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जो वह था। तो एंटिपास और हेरोडियास के साथ क्या हुआ? खैर, बाइबल हमें नहीं बताती है, लेकिन बाइबल के सिद्धांत उनके जीवन में काम करते हैं। व्यभिचार का फल कभी नहीं मिलता। मार्क कभी कभी एंटिपास को राजा कहता है, जैसा उसने व्यवहार किया। गलील के भीतर वह एक राजा का सबसे करीबी व्यक्ति था जो उनके पास था, लेकिन एंटिपास तकनीकी रूप से राजा नहीं था। तकनीकी रूप से वह केवल एक टेट्रार्क था, जैसा कि मैथ्यू और ल्यूक के अधिकांश अंशों में है। हो सकता है कि मार्क हेरोदेस एंटिपास का मजाक उड़ा रहा हो, खासकर अगर वह जानता हो कि बाद में क्या हुआ। हेरोदियास का एक भाई था जिसका नाम हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम था। अधिनियम 12 में उसे केवल हेरोदेस कहा गया है। अग्रिप्पा की उपाधि उसके बेटे हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय के लिए सुरक्षित रखी गई है, जिसने थोड़ा अधिक परिपक्व व्यवहार किया। लेकिन हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम रोम में गयुस कैलिगुला के साथ पार्टी के साथी थे। गयुस कैलिगुला बाद में सम्राट बने और उन्होंने अपने पुराने मित्र अग्रिप्पा की देखभाल की। अग्रिप्पा लोगों को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। उसने रोम में ऐसा किया। उसने यहूदिया में भी ऐसा किया। जब वह यहूदिया का राजा बना, तो उसने वहां के लोगों को खुश करने की कोशिश की, और अधिनियम 12 इस बारे में बात करता है। परंतु वह यहूदिया का राजा बन गया। कैलीगुला ने वास्तव में उसे रोम छोड़ने नहीं दिया, लेकिन जब कैलीगुला की मृत्यु हो गई, तो अगले सम्राट क्लॉडियस ने अग्रिप्पा प्रथम को यहूदिया में यहूदिया का राजा बनने के लिए भेजा, और उसने 41 से 44 तक वहां शासन किया, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उनकी मृत्यु का वर्णन जोसेफस और अधिनियम 12 दोनों में किया गया है। लेकिन ठीक है, यहां हेरोडियास का भाई है। वह आता है और रोम में कुछ समय बिताने के बाद पूर्ण राजा बन जाता है। हेरोदेस एंटिपस एक पूरी पीढ़ी के लिए गलील का चतुष्कोण था। वह कभी राजा नहीं बना था और हेरोडियास परेशान था। उसने कहा, मेरा भाई राजा है, तुम राजा क्यों नहीं हो? लेकिन जब तक सम्राट ऐसा न कहे, तब तक कोई भी राजा नहीं बन सकता था। एंटिपास ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको सम्राट की अनुमति लेनी होगी। लेकिन यहूदी इतिहासकार जोसेफस हमें बताता है कि हेरोडियास उसे बार बार परेशान करता रहा, जब तक कि आखिरकार उसने हार नहीं मान ली और एंटिपास ने सम्राट से प्रार्थना की और कहा, क्या मैं राजा बन सकता हूँ? इस पर सम्राट ने उत्तर दिया, कोई भी राजा नहीं हो सकता जब तक मैं न कहूं कि वह राजा हो सकता है। तस्वीरों के लिए फिर से खेद है। जो कुछ भी मुफ्त था मैंने ले लिया और बस मिश्रित और मिलान किया। लेकिन वैसे भी सम्राट एंटिपास के अनुरोध से इतना क्रोधित हुआ कि उसने एंटिपास को गॉल में निर्वासित कर दिया। परंतु उसने हेरोदियास से कहा, तुम जानते हो, तुम हमारे मित्र हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम की बहन हो, इसलिए तुम्हें निर्वासन में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, नहीं, मैं भी चलूंगी। इसलिए हेरोदेस एंटिपास और हेरोदियास ने अपने अंतिम दिन निर्वासन के रूप में बिताए। इसमें उलझने की बात नहीं है, लेकिन उन्हें जॉन की बात सुननी चाहिए थी, है ना? यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 12 मैथ्यू 12 से 14 है।